सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे। इट्स ओके। आरवी ने उसके शर्मिंदगी से झुके सर को देखकर तुरंत ही उसकी बात काट दी। शान ने निगाहें उठाकर उसको देखा। आरवी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था और ये प्यार का एहसास था जो उसके मन को गुदगुदा रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, आई नो, आज फिर किसी बात पर आप बहुत परेशान हैं। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। पति पत्नी हैं हम, गले लगने में कोई बुराई नहीं। फिर आपकी पत्नी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज है कि जब जब आपको मेरे सहारे की ज़रूरत पड़े, मैं आपको संभालूं। आरवी की बातों से पता नहीं क्यों पर शान के दिल को अलग सी खुशी का एहसास हुआ। इस बार उनके रिश्ते का जिक्र करने पर भी शान को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि धड़कनों की लय बढ़ गई। वो एकटक आरवी को देखता रहा। आरवी ने मुस्कुराकर आगे कहा, सच सच बताइए, आज फिर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं ना? आपका चेहरा बता रहा है किसी बात का आप पर बहुत बुरा असर हुआ है। मुझे तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था, पर तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच सच बताइएगा, आप परेशान थे इसलिए आप आधी रात को यहाँ मुझसे मिलने आए हैं ना? शान तो खुद परेशान था कि वो इस वक्त उसके सामने आखिर आया ही क्यों। जब इतने देर से यहीं था तो पहले क्यों अंदर नहीं आया? तब आता तो अंशु से भी मिल लेता, पर वो अभी ही यहाँ क्यों आया जब वो जानता था कि अंशु तो अब सो चुकी होगी? आना तो एक सवाल था ही, साथ ही यूं आरवी को गले लगाना, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। आरवी का सवाल सुनकर वो सक पका गया। क्या सच में वो यहाँ उसी से मिलने आया था? पर क्यों? ये सवाल अब उसको परेशान कर रहा था। आरवी अब भी जवाब के इंतजार में उसे ही देख रही थी। शान कुछ पल परेशान सा उसके सवाल और अपने जवाब के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपने भाव बदले और सख्ती से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अंशु से मिलता चलूं। टाइम नहीं देखा था मैंने, वरना कभी इस वक्त यहाँ नहीं आता। उसके जवाब को सुनकर आरवी की मुस्कान बड़ी हो गई। शान की जुबान कुछ और कह रही थी और आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। वो इतने वक्त तक उसके साथ रहते हुए उसको इतना तो समझ गई थी कि शान अपने भावों को आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं करता। शायद वो दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता, इसलिए हमेशा रूडनेस का चोला ओढ़े रहता है। अब भी वो यही कर रहा है। आरवी ने भी इस बात को यही खत्म करते हुए मुस्कुराकर आगे कहा, अच्छी बात है, पर अब जब आप आ ही गए हैं तो बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी ला देती हूँ। आरवी ने उसको सोफे पर बैठने को कहा और जैसे ही जाने को मुड़ी, शान ने तुरंत उसको रोक दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं वापस ही जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरवी के कदम ठहर गए। उसने वापस उसकी तरफ मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप थक कर आए होंगे, बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक बार फिर शान के तरफ घूमते हुए बोली, आप सीधे ऑफिस से आ रहे हैं? शान जो सोफे पर बैठने के लिए बढ़ा था, क्योंकि भले उसने इनकार किया था पर इस वक्त वो खुद भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। आरवी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था और आरवी के रोकने पर वो भी सोफे की तरफ बढ़ गया था। पर जैसे ही उसके कानों में आरवी की आवाज़ पड़ी, उसके कदम ठहर गए। वो उसके तरफ मुड़ा तो सही, पर समझ नहीं सका कि उसके सवाल पर आखिर जवाब क्या दे। कैसे बताए सच कि वो ऑफिस से तो घंटों पहले निकल गया, यहीं बाहर तो खड़ा था, उसी के घर के बाहर, जाने क्यों पर घंटों से खड़ा था। अगर सच कहा तो जाने कितने ही सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब भी नहीं था उसके पास। अभी वो खुद नहीं जानता था कि क्यों घर जाने की जगह वो यहाँ आया था, क्यों वो घंटों घर के बाहर खड़ा था पर एक बार भी अंदर नहीं आया, और अब अंदर आया तो तब जब सारी दुनिया सो चुकी है। ये सच्चाई जो जाने कितने ही सवालों को जन्म दे रहा था, वो भला उसे कैसे बताता? इसलिए उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया, फिर तो आपने अब तक डिनर भी नहीं किया होगा। आरवी अब परेशान निगाहों से उसको देखने लगी। उसे शान की चिंता होने लगी थी, जिसे खुद शान भी महसूस कर पा रहा था, और उसका यूं परवाह करना उसके दिल को अलग ही सुकून दे रही थी। उसने हामी भर दी तो आरवी ने झट से किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। शान कुछ कह तक न सका, आरवी ने उसे मौका ही नहीं दिया और तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। शान कुछ देर यूं ही खड़ा किचन की तरफ देख रहा था, फिर वो सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद आरवी वापस लौटी तो शान सोफे पर पीछे सर टिकाए और आंखें बंद किए बैठा हुआ था, माथे पर चिंता की लकीरें और चेहरे पर तनाव। आरवी ने जब उसका थका हुआ, उदास, परेशान चेहरा देखा तो कुछ पल वहीं खड़ी होकर उसको देखती रही। फिर उसने झुककर ट्रे सामने खड़े टेबल पर रख दिया। ट्रे के रखने पर हल्की आवाज आई, जिससे शान ने अपनी आंखें खोल दी और सीधे बैठा। तब तक आरवी ने कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कॉफी खत्म थी और इतनी रात को दुकान खुली नहीं होगी तो चाय बनाई है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये चाय पियेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। जानती हूँ आप चाय नहीं कॉफी पीते हैं, बस आज एडजस्ट कर लीजिए, चाय के साथ स्नैक्स भी हैं, आप इसे खाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। आरवी बोलते हुए थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं शान इनकार न कर दे, उस पर गुस्सा न करने लगे, क्योंकि उसने इतने वक्त कभी उसे चाय की तरफ देखते हुए भी नहीं देखा था। पर शान ने उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा रिस्पांस किया। उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ से चाय का कप ले लिया, फिर सामने रखी ट्रे को देखते हुए बोला, इसे ले जाओ, मुझे नहीं खाना अभी ये सब, मैं चाय से काम चला लूंगा। आरवी ने उसको फोर्स नहीं किया और चुपचाप ट्रे लेकर वापस किचन की तरफ बढ़ गई। शान ने अब चाय की एक सिप ली, इसके साथ ही उसकी पलकें बंद हो गईं। सच में चाय एकदम कड़क बनी थी, जो इंसान की थकान को पल में उतार दे और उसको एकदम तरोताजा कर दे। आरवी ने पलट कर देखा तो अब शान के चेहरे पर थकान कुछ कम होती नजर आ रही थी, एक सुकून झलकने लगा था उसके चेहरे पर। आरवी किचन में चली गई। करीब पौने घंटे बाद वो एक बार फिर वहां आई और खाने की प्लेट उसके सामने रखते हुए बोली, चलिए जल्दी से खाना खाइए, इतनी देर रात तक भला कोई भूखा रहता है? ये कोई वक्त है घर जाने या डिनर करने का? मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी आप इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं। क्या आप नहीं जानते कि ऐसे बेवक्त खाना खाने से हमारे शरीर और सेहत पर गलत असर पड़ता है? अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो भला आप काम कैसे कर पाएंगे? लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं है। खैर छोड़िए, आपको कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी की कोई बात सुनाई ही नहीं देती है, ना ही आपको आपके अंदर की कमियां और आपकी गलत आदतें दिखती हैं। आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो आपको सुनना है। चलिए अब जल्दी से खाना खाइए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अगला दिन शुरू होने वाला है। आरवी बिल्कुल एक आम पत्नी की तरह पूरे हक से उसे डांट रही थी, उसकी शिकायत उसी से कर रही थी और शान बिना किसी भाव के उसे देखे जा रहा था। आरवी ने उसको खाना का इशारा किया और खुद किचन में चली गई। शान अब किचन की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बाद आरवी वापस वहां आ गई और पानी का जग उसके सामने रखते हुए बोली,
आप अभी तक यूं ही बैठे हैं, चलिए जल्दी से खाना शुरू कीजिए। आज आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि आप आने वाले हैं तो मैं आपका इंतजार करती, पर अब तो मैंने डिनर कर लिया है, इसलिए अब आप भी खा लीजिए। शान ने अब एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मान ली और खाना खाने लगा। आरवी वहीं बैठकर बड़े प्यार से उसको खाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद शान ने खाना खत्म करने के बाद उसकी तरफ निगाहें उठाई तो आरवी सकपका गई। उसने हड़बड़ाहट में उस पर से अपनी निगाहें हटा ली और उठते हुए बोली, मैं टावल लेकर आती हूँ। उसने तुरंत ही जाने के लिए कदम बढ़ाए। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके कानों में शान की आवाज़ पड़ी, रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आरवी ने पीछे पलटकर देखा तो शान अपने रुमाल से ही अपने गीले हाथों को पोंछ रहा था। आरवी वापस चली आई, फिर बर्तन लेकर किचन में चली गई। कुछ 5 मिनट बाद वापस बाहर आई और शान को देखकर बोली, बहुत रात हो गई है, आज यहीं रुक जाइए, कल सुबह अंशु से मिलने के बाद चले जाइएगा, आपको बहुत याद करती है वो। शान ने उसकी बात सुनी तो उसने उठते हुए कहा, नहीं अब मुझे जाना चाहिए, घर पर बड़ी माँ इंतजार कर रही होंगी। शान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, आरवी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए हैरानी से बोली, आपने बड़ी माँ को बताया नहीं कि आप यहाँ आए हैं? शान ने उसका सवाल सुनकर सहजता से कहा, मैंने बताया था ना कि प्लान करके नहीं आया हूँ, पास से गुजर रहा था तो आ गया, वक्त पर ध्यान नहीं दिया, वरना आता नहीं। शान ने साफ झूठ कहा, पर आरवी ने उसको सच मान लिया। वो उसको बाहर तक छोड़ने आई और जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई उसे देखती रही, फिर अंदर चली आई। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, लाइक एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं।